हम सभी एक हाथ की ताली से अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं आदरणीय दीदी को। 1962 में प्यारे बाबा ने चुना, तब से लेकर आज तक आप ईश्वरीय पढ़ाई का अध्ययन कर रहे हैं। 1966 से माया की नगरी कही जाने वाली मुंबई में आपने सेवाएं शुरू की। 1971 से आपने विश्व पिता को विश्वव्यापी बनाने के लिए विदेश सेवाएं प्रारंभ की। आप ऑस्ट्रेलिया जैसे स्थान पर रहकर ऑस्ट्रेलिया के साथ साथ 17 देशों का आप मार्गदर्शन निर्देशन करते रहे। वर्तमान समय आप ज्ञान सरोवर बेटर वर्ल्ड एकेडमी के डायरेक्टर हैं। हम अपने बीच में उनको पाकर बड़े ही आत्म गौरव का अनुभव कर रहे हैं। प्यारे बाबा भी कई बार साकार मुरलियों में, अव्यक्त मुरलियों में आपकी विशेषताएं, आपकी पवित्रता, निर्मलता का वर्णन करते रहे हैं। हम सब ब्रह्मावत्स बहुत उत्साहित रहे कि आपसे डायरेक्ट मिले। आज हम दीदी को हम अपने बीच में पाकर उनसे निवेदन करेंगे कि आत्मस्वरूप से हम ब्राह्मण जीवन को बेफिक्र जीवन कैसे बनाएं, उस पर हमें मार्गदर्शन दें। आदरणीय दीदी,
क्या टॉपिक बताएं?
बेफिक्र जीवन आत्मस्थिति के द्वारा,
बेफिक्र जीवन।
जैसे आप डबल लाइट फरिश्ता स्थूल और सूक्ष्म है, ऐसे हम भी बन जाएं।
ओम शांति। हमको मालूम है आत्मा है, परंतु उस स्मृति में रहना ये थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि देहभान की कई जन्मों की आदत है। विशेष द्वापर युग शुरू से हम देहभान में रहे। अब देही अभिमानी हो रहना है, ये पुरुषार्थ करना है। तो इसलिए बाबा घड़ी घड़ी हर रोज मुरली में याद दिलाते हैं कि बच्चे अपने को आत्मा समझ, मुझ बाप को याद करो। तो इसलिए ये देखना है कि आत्मिक स्थिति में रहें और बाबा की याद में रहें। ये अभ्यास सबसे पहले करना है। अब संसार में अनेक समस्या है, चाहे हम योगी भी बने हैं उसका मतलब ये नहीं कि कोई तकलीफ नहीं आएंगी। भक्ति में तो समझते हैं कि भगवान का हाथ पकड़ लिया, हमारा काम पूरा हुआ। परंतु यहां तो हमने देखा कि भगवान का हाथ पकड़ा और मुसीबत शुरू हुई, ठीक है ना? कितनों को घर वालों का सामना करना पड़ा, जरा हाथ उठाना। 25-30 है जिनों को घर वालों का सामना करना पड़ा, किसी को समाज का सामना करना पड़ा, 1-2 को समाज का भी सामना करना पड़ता, मुसीबत शुरू हो जाती है। तो सबसे बड़ी मुसीबत होती है घर वालों का सामना करना। उस समय निडर रहना पड़ता है, नहीं तो चिंता हो जाती है ना कि झगड़ा करेंगे, गाली देंगे, मारपीट करेंगे, क्या होगा, चिंता हो जाती है। परंतु जितना हम निडर रहेंगे, मारपीट तो होंगे, गाली तो मिलेंगी, बाबा ने पहले से बोल दिया कि पहले कांटों का ताज पहनना पड़ेगा, फिर सत्युग में राजाई का ताज मिलेगा। अभी तो कांटों का ताज पहन लो। तो इसलिए बाबा हमको पहले से तैयार करते हैं। थोड़ा नजदीक नजदीक बैठो, पीछे आने वाले बस ठीक है। तो इसलिए बाबा का हाथ पकड़ रखना है और हिम्मत रखनी है तो बाबा की मदद है। हमारे सामने कई आए विघ्न वाले, विघ्न डालने वाले, घर वालों को रोकने वाले, इतने तक कि एक भाई है हमारे पास आया, कहता है कौन से शास्त्र में लिखा है ब्रह्मचर्य पालन करने का घर में, क्योंकि वो शास्त्र लगे पढ़ा था, संस्कृत पढ़ा था, संस्कृत में बात करता था, इतना उसको संस्कृत का अभ्यास था। मेरी पत्नी को आप सेंटर पर नहीं आने देना। मैंने कहा भाई आपकी पत्नी को नहीं आने देना है तो आप घर में रोको, हम क्यों रोके, ये तो हमारा मंदिर है, मंदिर में पुजारी किसी को आने के लिए रोकता नहीं है। घर वालों को पसंद नहीं है तो नहीं आने देवे। परंतु वो माता भी बहुत मजबूत थी, कई सामना किया उसने, और सामना करके फिर सफल हुई, पति को लाई ज्ञान में। आकर बच्चे तो थे ही ज्ञान में, पति भी आ गया ज्ञान में और सेवा भी करने लगा। तो क्या है, मुसीबत आए उसमें, जैसे हमारा गीत है ना, ये मत कहो खुदा को मेरी मुश्किलें बड़ी है, मुश्किलों को कहो मेरा खुदा बड़ा है। तो जिनको खुदा पर विश्वास है कि खुदा हमें मदद करेगा, तो वो इन बातों से डरता नहीं। फिर मुसीबतें आती है, बीमारी की, बीमारी में लोगों को चिंता हो जाती है ना, क्या होगा कैसे होगा, विशेष कड़ी बीमारी है, कैंसर है, तो कितनी चिंता हो जाती है क्या होगा। अपने मरने की जितनी चिंता नहीं होती है, उसके बाद दूसरों की चिंता रहती है कि मेरे बच्चों का क्या होगा, मेरे पति का क्या होगा, तो कितनी चिंता रहती है ना। और चिंता से क्या होता है, और भी बीमारी बढ़ती है। परंतु ब्राह्मण क्या है, बेफिक्र रहते हैं, जो होना होगा होगा, ड्रामा में जो होगा वो होगा, जो होगा वो कल्याणकारी होगा, तो वो चिंता नहीं करते हैं। ऐसी रस्म में परंतु विशेषज्ञ कंसल्टेट करते, ठीक कंसल्टेशन करते हैं, डॉक्टर ठीक मिल गया, वो जो राय देंगे उस अनुसार चलना है। तो बाबा पर भी विश्वास रखना पड़ता है डॉक्टर पर भी विश्वास रखना पड़ता है, तो फिर क्या है, चिंता नहीं, क्योंकि मोह नहीं, न शरीर में न संबंधियों में। तो ये बाबा हमको नष्ट मोह पहले बनाता है और अशरीरी बनाता है। जब हम अशरीरी बन जाते हैं तो क्या होगा, दर्द भी नहीं होगा, चिंता भी नहीं। क्या है कि लौकिक में देखो तो किसी का ऑपरेशन होगा तो कितनी चिंता हो जाती है, स्पेशली ऑपरेशन थिएटर में जाने के पहले दिल धक धक होती है, क्या होगा, कैसे होगा, सब ठीक होगा या नहीं। परंतु ब्राह्मण हंसते चेहरे जाते हैं ऑपरेशन थिएटर, क्यों, हमारे पास एक बुजुर्ग माता थी, उसको कैंसर था। तो पहले तो उसने मुझे पूछा कि मैं ऑपरेशन कराऊं या मेडिटेशन से ठीक हो जाएगा। मैंने कहा ऑपरेशन तो जरूर कराना होगा, मेडिटेशन तो जरूर मदद करेगा, पर सिर्फ मेडिटेशन से काम नहीं चलेगा। तो उसने ऑपरेशन कराने का फाइनल किया और जब उसको ऑपरेशन थिएटर में जो वार्ड बॉय ले जा रहा था, वो कहता है तुम तो बहुत खुश नजर में आती है। और ऑपरेशन के बाद भी वो खुश रही। मित्र संबंधी बेचारे चिंतित होके मिलने आते थे, परंतु वो तो हंसी हंसी से बात करती थी, उन्हों को भी दिलासा देती थी। तो ये क्या है, मेडिटेशन की कमाल है, ज्ञान योग की, कि हम कैसी भी परिस्थिति में खुश रह सकते हैं। तो इसलिए बीमारी है, ऑपरेशन है, कैंसर है, हम चिंता नहीं करते। दुनिया में लोगों को चिंता कब होती है, धन होता है तो भी चिंता है, नहीं है तो भी चिंता है ना, उन्हों को धन है तो चिंता है उसको संभाले कैसे, कोई चोर न लूट जाए, इनकम टैक्स वाले ऑफिसर पीछा ना करें, और कोई हमको मार ना दे, क्योंकि धन के लिए बच्चे भी बाप को मार देते हैं कि मुझे जल्दी वर्षा मिले। तो उनको तो चिंता रहती है, हम संभाल करते हैं, बाबा कहते हैं केयरफुल रहो परंतु बेफिक्र रहो। इसलिए संभाल करनी है अपनी जो भी मूल्यवान चीजें हैं, ऐसे नहीं जहां तहां रख दो, पर चिंता भी ना हो, क्योंकि हमारे भाग्य में होगा कोई छीन नहीं सकेगा, भाग्य में नहीं होगा छीन लेगा। और दुनिया वालों को ये भी चिंता है, आजकल क्या है, कई धंधे बंद हो जाते हैं और कई कंपनी बंद हो जाती है, तो नौकरों को मालूम तो पड़ जाता है कि अब कंपनी की आर्थिक व्यवस्था ठीक नहीं है, अवस्था ठीक नहीं है, अभी कईयों को छुट्टी मिल जाएंगी, तो चिंता लगती है कि हमारी नौकरी छूट जाएंगी तो क्या होगा। परंतु बाबा ने हमें ब्रह्मा की नॉलेज दे रही है, जो कुछ होगा अच्छा होगा, जो हुआ ठीक हो। जो हो रहा है कल्याण है, उसमें भी ठीक है, और जो होगा बहुत ही अच्छा होगा। तो जिसको ये बात पर निश्चय है बाबा के ड्रामा पर, तो चिंता नहीं करेंगे भविष्य की क्या होगा। बाबा कहता है मैं अपने बच्चों को कम से कम दाल रोटी जरूर देंगा, बिल्ली के पुंगरे कैसी भी आग लगती है बच जाते हैं। तो इसलिए हमें सावधान रहना है, परंतु चिंता नहीं करनी है क्या होगा भविष्य में। स्टूडेंट्स हैं उन्हों को चिंता होंगी, एग्जाम के टाइम चिंता हो जाती है ना कि क्या होगा रिजल्ट। स्टडी करो, जो रिजल्ट होगा होगा। हाँ, क्योंकि योग द्वारा हमारी एकाग्रता की शक्ति, याद शक्ति बढ़ती जाती है, इसलिए कम अभ्यास करके भी ब्राह्मण बच्चे हैं ना अच्छे मार्क्स ले सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया में तो 1970s में 14-14 साल की कुमारियां, तीन कुमारियां ज्ञान में आती थी। एग्जाम के दिन भी पहले मुरली सुनकर फिर एग्जाम में जाती थी और अच्छे मार्क्स ले आती थी। तो क्या है कि एग्जाम की चिंता नहीं। कई बार क्या होता है, कईयों को इंटरव्यू देने जाते हैं नौकरी के लिए, तो धक धक होता है क्या होगा, क्या पूछेंगे, जवाब दे सकूंगा या नहीं। परंतु जितना बाबा पर विश्वास रख कर जाते हैं तो बाबा भी मदद करते हैं। क्योंकि कई ब्राह्मणों का क्या होता है, भाषण करना होता है तो चिंता हो जाती है, नर्वस हो जाते हैं कि हम इतनों के सामने कैसे बोलेंगे, क्योंकि पब्लिक में बोलने का थोड़ा डर रहता है कईयों को। परंतु कई ब्राह्मण अपना अनुभव सुनाते हैं, मैं बाबा को कह देता हूँ बाबा मैं निमित्त हूँ, तुमको कराना है, और बाबा अच्छा ही भाषण करा देता है। तो इसलिए जो अपने को निमित्त समझकर कार्य करते हैं और याद रखते हैं कि बाबा करण करावनहार है, तो क्या होता है, चिंता नहीं रहती। बाबा के हाथ में हाथ दे दिया। तो इसलिए धन की चिंता न है, न नौकरी छूटने की चिंता है, न धन ज्यादा है तो संभालने की चिंता है, क्योंकि कोशिश करके हम धन अपने पास रखते ही नहीं हैं। जो सरेंडर है वो क्या करते हैं, कुछ थोड़ा कुछ अपने घर चलाने के लिए पैसा रखते हैं, बाकी यज्ञ में स्वाहा कर देते हैं। क्यों ज्यादा पैसा रखे चिंता हो। और बाबा मदद भी करते हैं, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में हमारे पास एक एरोप्लेन का इंजीनियर है, मैकेनिकल इंजीनियर जो एरोप्लेन को ठीक करता है। अभी वो जिस एयरलाइन में काम करता था, एक दिन अचानक उन्होंने अपने दरवाजे बंद कर दिए, पैसेंजर आए दरवाजा बंद, स्टाफ आया, दरवाजा बंद, ये एयरलाइन बंद हो गई। पहले से नोटिस भी नहीं दी, एक दिन की भी नोटिस नहीं दी। वो नौकरी पर टाइम पर आए और देखा कि एयरपोर्ट के तो दरवाजे ही बंद हैं, तो मालूम पड़ा कि ये तो एयरलाइन कर्जे में गई है, बंद कर दी है। तो क्या हुआ कि उनके पास एयरक्राफ्ट तो पड़े थे, उसको तो संभालना था, क्योंकि दूसरों को बेचना पड़ेगा ना उसको, एयरलाइन वालों को, तो उसको तो नौकरी चालू रही, क्योंकि वो अच्छा काम करता था, योगी था, ज्ञानी था, अच्छा काम करता था, उसको छुट्टी नहीं मिली, नौकरी चालू रही। फिर दूसरी एयरलाइन ने वो एयरलाइन खरीद कर ली, तो दूसरी एयरलाइन ने भी उसको नौकरी पर कायम रखा। तो अभी तक आज 20 साल हो गया, उसकी नौकरी चालू ही है। बाकी मेजोरिटी स्टाफ छुट्टी करती। तो क्या है, जैसे बाबा कुछ न कुछ रास्ता निकाल देता है। और क्या है कि जब नौकरी से छुट्टी देते हैं ना, तो वो भी देखते हैं कि जो अच्छा काम करने वाला है उसको लास्ट में छुट्टी देंगे। तो हम ब्राह्मण है, सिंसियर है, एफिशिएंट है, और इधर उधर नहीं करते हैं ना। बाकी लोग क्या करेंगे, गप्पे मारेंगे, टाइम वेस्ट करेंगे नौकरी पर। ब्राह्मण क्या है, अपना काम करते रहेंगे और एफिशिएंट भी होते हैं। नौकरी पर क्या है कि जल्दी काम पूरा कर लेते हैं, तो औरों को भी मदद करते हैं। तो इसलिए उन्हों को जल्दी छुट्टी नहीं मिलती। फिर चिंता होती है कि अपने संस्कारों को परिवर्तन करने की, क्योंकि समझो घर वाले वो करते हैं, विघ्न डालते हैं, उसका तो सामना कर लेते हैं। फिर विघ्न आता है ब्राह्मणों के तरफ से भी, तो विघ्न आता है ना, कहां जेलसी होती है, कहां सेवा का चांस नहीं मिलता। तो कंपैरिजन कंपटीशन के यदि संस्कार है तो चिंता हो जाती है कि मैं अच्छा परफॉर्म कर सकूंगा या नहीं, मुझे चांस मिलेगा या नहीं। मान शान की इच्छा है तो भी अवस्था बिगड़ जाएंगी, या हमको मान शान नहीं मिलता है, हमारी कोई सुनता नहीं, थोड़ा ईगो होगा कि हमारी कोई सुने नहीं, सुनता है तो अच्छा नहीं लगता, स्थिति बिगड़ जाती है। परंतु बाबा कहते हैं, आज भी मुरली में बताया, महात्यागी बनना है, मान शान की इच्छा नहीं करनी है, मान शान मिलता है उसका भी त्याग करना है। इच्छा तो नहीं रखो परंतु मिलता है उसका भी त्याग करो। ऐसे नहीं समझो कि मैं बहुत अच्छा हूं, मुझे सब मांग करते हैं मेरी, तो इसलिए सेवा में भी सफलता मिलेंगी या नहीं मिलेंगी उसकी चिंता नहीं करो, क्योंकि क्या होता है कि सेवा में विघ्न डालने वाले भी बहुत होते हैं, विशेष आर्य समाज में या पक्के हिंदू ना? कई बार हम हैं मंदिरों में सेवा करते हैं तो क्या होता है, थोड़ा टाइम तो मंदिर का पुजारी या ट्रस्टी छुट्टी देते हैं, पर देखते हैं कि ये तो उसके ग्राहक अभी सब ब्रह्मा कुमारियों के पास जाते हैं तो कहेंगे अभी यहां नहीं करो सेवा, कारण देंगे, कोई भी बहाना देकर बंद करा देते हैं। तो क्या होता था श्रीलंका में, श्रीलंका है बुद्धिस्ट कंट्री, मेजोरिटी बुद्धिस्ट है लोकल लोग। तो हमारा एक भाई था ऑस्ट्रेलिया का भाई, शुरू में गया था, भाषण करता था यूनिवर्सिटी, बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटी में भाषण करने उसको निमंत्रण मिला, तो वो गया था, भाषण करता था। तो 50 बुद्धिस्ट मंक जो वहां के टीचर होंगे सब आए, झुंड का झुंड आया सामने से। तो वो आया तो इसलिए वो आकर चिल्लाने लगे, तो लोकल भाई बहनों ने ये भाई ऑस्ट्रेलियन भाई को कहा तुम पीछे से भाग जाओ। तो उसको पीछे से भगा दिया और खुद भी सारा टेप रिकॉर्डर और जो भी सामान था अपना माइक्रोफोन ये वो लेकर रवाना हो गए। तो क्या होता है विघ्न आते हैं, सामना करने वाले तो होते ही है, आपने निर्वैर भाई की भी कहानी सुनी होंगी कि बंबई में लक्ष्मी नारायण के मंदिर में रतन मोहिनी दादी और निर्वैर भाई गए थे भाषण करने, तो रतन मोहिनी दादी तो सफेद साड़ी और टीका नहीं करती है, तो वो लोग तो समझते हैं कि ये लोग क्रिश्चियन है, टीका नहीं लगाते हैं, कुछ गले में नहीं पहनते, सफेद कपड़े पहनते हैं। तो क्या हुआ कि भाषण के बाद सब उसको मारने दौड़े, तो रतन मोहिनी दादी को तो जल्दी रवाना कर दिया, पर निर्वैर भाई को मार खाना पड़ा। तो क्या है कि ऐसे विघ्न डालने वाले आते हैं और डालते हैं, परंतु बाबा के बच्चे हैं वो निडर होके सेवा करते रहते हैं, कभी कभी गाली खानी पड़ती है, मार खानी पड़ती है, कुछ भी है, उससे डरना नहीं और चिंता करके सेवा छोड़ भी नहीं देनी है। तो श्रीलंका में ही उन्होंने 12 लिंग की यात्रा की और शहर शहर में गांव गांव में मंदिरों में भाषण किया या मंदिरों के हॉल में या आंगन में, और उन्हों का सहयोग लिया। तो क्या है कि जो हिंदू मंदिर वाले टक्कर थे ना हिंदू, उन्होंने भी प्रोग्राम में भाग लिया और एक एक प्रोग्राम में हजारों लोग आए, एक प्रोग्राम में तो 40,000 लोग आए। तो समझो सेवा करते रहो तो धीरे धीरे सहयोग हो जाते हैं। और एक शहर में क्या हुआ कि गवर्नमेंट ने जमीन दी थी पहले मुस्लिम को, परंतु उन्होंने कुछ बनाया नहीं, तो गवर्नमेंट ने हमको जमीन दे दी ब्राह्मणों को। तो जैसे ही ब्राह्मणों ने अपना मकान बनाना शुरू किया उस जमीन पर, तो मुस्लिम लोगों ने विरोध किया। तो फिर क्या हुआ कि क्योंकि गवर्नमेंट तो काउंसिल वगैरह हमारे पक्ष में थी, तो उनका कुछ चला नहीं। परंतु जब उस मकान का उद्घाटन हुआ, मैं थी सामने उद्घाटन के टाइम, बहुत बड़ा मकान बनाया है, हॉल में 500-600 लोग बैठ सके, इतना बड़ा हॉल बनाया है। तो जब मकान का उद्घाटन हुआ तो उन्होंने उसी मुस्लिम लोगों को बुलाया जिन्होंने विरोध किया था, और वो आए और बहुत अच्छी तरह से मिले। बुद्धिस्ट लोग भी आए, सब आए। मतलब सेवा करते करते क्या होता है, पिघलते जाते हैं। वहां के आर्मी में उन्होंने कई फंक्शन किए, उन्होंने समझो जो ड्रग एडिक्ट्स है उनकी भी कई सेवा की, जेलों में भी सेवा की। तो जेल के जो भी बड़े बड़े ऑफिसर, मेजोरिटी तो वहां ऑफिसर माना लोकल लोग, सिंगला बुद्धिस्ट, तो सेवा करते करते उनों की इतनी इतनी समझो अच्छी भावना बैठ गई, जो समझो सेंटर पर भी आने लगे, वहां भी शिक्षा लेने लगे, और राखी बंधवाने आए। खास क्या है कि राखी का तो महत्व है कि रक्षा होगी, आपको प्रोटेक्शन मिलेगा, तो महत्व तो है ही। और भाई बहने सेवा भी करते हैं, राखी का इम्पोर्टेंस भी बताते हैं, और इतना है कि हम जाते हैं तो बड़े बड़े ऑफिसर, जनरल, आर्मी के और जेलों के सुप्रिंटेंडेंट वगैरह सेंटर पर आकर राखी बंधवाते। और यदि पॉलिटिशियंस हैं, एक बारी मैं गई थी तो इलेक्शन होने वाली थी, तो सब पॉलिटिशियन आए आशीर्वाद लेने के लिए, सफलता के लिए, राखी बनवाने के लिए। तो क्या है कि बाबा का जो सेवा का तरीका है वो विरोधियों को भी सहयोगी बनाता है। इसलिए विरोध का डर नहीं रखना है, चिंता नहीं करनी है, परंतु बाबा की याद में सेवा करते रहो। तो जितनी बाबा कहते हैं ना, याद और सेवा करेंगे आपके कैसे भी बंधन है छूट जाएंगे, पर उसके लिए नष्ट मोह बनना पड़े, क्योंकि मोह होगा बंधन नहीं टूटेगा। मोह की रस्सी बांध रखती है। आप में से किसी को बंधन है, जरा हाथ उठाओ, बांधेली कौन है? अभी दो चार हैं। अच्छा, क्योंकि हमारे पास तो बांधेले भाई भी है, कई माताएं छोड़ी, बहुत स्ट्रांग होती है और भाई थोड़े नरम होते हैं। हमारे पास ऑस्ट्रेलिया में एक इंडियन भाई आता है, उसको बंधन है, माता उसको आने भी नहीं देती है। तो क्या है कि बांधेले भी क्या करते हैं, क्लास में आते रहते हैं, योग करते रहते हैं, मुरली पढ़ते रहते हैं, तो उन्हों को मदद मिलती है और ऐसे टाइम पर आकर सेवा भी करते हैं फ्री टाइम में। जैसे शुरू शुरू में भी आपको मालूम है कई बांधेलियों को कितना बंधन था, परंतु कैसे न कैसे दूसरी जो स्वतंत्र ब्राह्मण थे उन्होंने मुरली पहुंचाते थे, छत से भी गिराते थे, खिड़की से भी देते थे और सब्जी वाली बनकर भी जाकर मुरली सरकार देती थी। तो समझो ज्ञान से प्यार होना चाहिए हमारा, बाबा में पूरा विश्वास होना चाहिए और हिम्मत होनी चाहिए, तो सफलता हमारी है ही है। ये याद रखना है कि सफलता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, तो इसलिए न डरना है न चिंता करनी है। डर और चिंता दोनों का कारण एक ही है, मोह। शरीर में मोह है तो डर रहेगा या चिंता होंगी, क्या होगा, बीमारी आई क्या होगा। शरीर के संबंधियों में मोह है तो भी चिंता होंगी कि बीमार है पता नहीं क्या होगा। पड़ोसी के बच्चे में मोह नहीं है, वो कितना भी बीमार होगा जाके राय देके आएंगे, इसको ऐसे करो ऐसे करो, ये दवा दो ये दवा दो, ये डॉक्टर के पास जाओ, ये डॉक्टर बहुत अच्छा है। पर अपना बच्चा बीमार होगा तो नींद फिट जाएंगी, खाना अच्छा नहीं लगेगा, इधर उधर दौड़ भाग करेंगे, इसको पूछेंगे किसको बताएं क्या करें क्या करें आदि आदि। क्यों मोह है, तो चिंता हो जाती है कि बच्चे को पता नहीं क्या होगा। थोड़ा देरी से बच्चा आया स्कूल से या पति देरी से आया ऑफिस से तो माताओं को चिंता हो जाती है ना, पता नहीं कहाँ एक्सीडेंट तो नहीं हुआ। इसलिए विदेश में तो क्या है, बच्चों को भी मोबाइल फोन दे देते हैं कि कोई भी तकलीफ है फौरन घर में फोन करना, उनको फोन रख देते हैं, देरी हो गई फोन करके देना, फोन कर देना कि हम देरी से आएंगे, कुछ भी तकलीफ हुई फोन कर देना। यहाँ तो बच्चों को फोन नहीं देते होंगे ना, इतना पैसा नहीं है कि बच्चों को भी फोन दे रहे हैं। पैसे वाले तो देते होंगे पर साधारण लोग नहीं देंगे, साधारण लोग है गरीब लोग है वो तो अफोर्ड नहीं कर सकते। वहाँ तो बच्चों को फोन है, वो ट्रेन में बैठकर भी अपने मित्रों को बात करते रहते। कई माताएं तो कंप्लेन करती है कि हमारे बच्चों के फोन का बिल इतना बड़ा आ गया, क्योंकि जरा भी ठहरते ही नहीं, जरा भी फ्री हुए फोन उठाया। और आजकल तो सोशल मीडिया पर भी बच्चे इतना बिजी रहते हैं बात मत पूछो। तो इसलिए विदेश में तो मैं, हम लोग अमेरिका में गए थे 70s में, तो घर वालों को चिंता रहती थी क्योंकि वहां क्या उस दिनों में होता था, बहुत इनसिक्योरिटी रहती थी। 71 में हम थे, इतनी इनसिक्योरिटी रहती थी। माताएं कहती थी हमको मालूम नहीं है सवेरे हमारे घर वाले गए शाम को आएंगे या नहीं, क्यों कि वहां आपके पास जेब में $20 होना चाहिए। कोई भी आकर मांगता है कि हमको पैसा दो, दे दो, नहीं देंगे गोली चलाए। विदेश में तो गोली बंदूक ले लेके फिरते हैं, बच्चे भी बंदूक लेके ही जाते हैं। तो हमने पढ़ा अमेरिका में बंदूक से बच्चे भी कितने मर जाते हैं, और मेजोरिटी एक्सीडेंट ऐसे होते हैं जान करके नहीं, जानबूझकर गोली नहीं चलाते हैं। एक बच्चे की बैग गिरी तो वो बंदूक से गोली निकल करके किसी के छाती में गए, मर गया। तो क्या है कि वहां तो पैसा नहीं दिया चोरों को, तो भी बंदूक चलाए। और दूसरा ये भी होता था कि ड्रग एडिक्शन, तो ड्रग एडिक्शन क्या है कि जो जिन पुशर कहते हैं उसको, वो क्या करते हैं कि शुरू शुरू में कैंडी में, आइसक्रीम में ड्रग डाल देते हैं, तो वो खाते खाते क्या है उन्हों को आदत पड़ जाती है, इसलिए बच्चे भी ज्यादा ज्यादा लेते हैं तो एडिक्टेड हो जाते हैं। बिगर समझे बच्चे ड्रग्स को एडिक्ट हो जाते हैं। तो क्या है कि पुशर है अपना माल बेचने के लिए कि ड्रग्स डालेंगे उसकी आदत हो जाएगी और भी खाएंगे हमारा धंधा अच्छा चलेगा। तो इसलिए माताओं को ये भी चिंता रहती थी कि पता नहीं हमारे बच्चों को ये ड्रग्स की आदत पड़ जाएंगे, या किसी को बच्चों को जेब खर्ची तो देनी पड़ती है, पॉकेट मनी स्कूल में जाते हैं तो वो पर नहीं है दुनिया वाले, तो इसलिए बाहर का तो बच्चे खाते हैं तो उनको पॉकेट मनी देंगे, मालूम नहीं सिगरेट लेंगे, शराब लेंगे। संघ के रंग में 10-12 साल के भी लोग बच्चे हैं ड्रग्स लेते रहते हैं, इसलिए माँ बाप को चिंता रहती है कि बच्चे ऐसे संघ में ना फंसे। तो क्या है कि यहाँ भी आजकल ड्रग्स बहुत हो गए, स्पेशली हमने देखा है पंजाब में बहुत ड्रग्स का प्रचार हो रहा है और ले रहे हैं लोग। तो क्या है कि चिंता करने के तो कई आज परिस्थितियां हैं, तो इसलिए देखना है कि हम ब्राह्मणों को बेफिक्र रहना, बेफिक्र बादशाह। दादी हमेशा कहती है मैं सफेद कपड़े बहुत अच्छे हैं, जेब हमारे खाली, दादी कहती मैं कभी पर्स नहीं लेती हूँ हाथ में, भले उसकी ब्राह्मणी पर्स उठाएंगी, जो डोनेशन मिलेगा ब्राह्मणी या उसका साथी सेवाधारी वो लेके यज्ञ में दे देगा दादी, फिर हाथ लगाएंगी। तो क्या है कि जब हम निमित्त बन के कार्य करते हैं कि बाबा का कार्य है, तो क्या है कि बाबा के भंडारे में ज्यादा पैसा आएगा तो अहम नहीं रहेगा, और कम पैसा आएगा चिंता नहीं रहेगी। जितना प्यार से औरों की सेवा करते रहेंगे ना, उनके ज्ञान से, योग से, खिलाने पिलाने से, टोली से सेवा करेंगे तो जरूर वो बाबा के जो बच्चे हैं वो जरूर बाबा के भंडारे में डालेंगे। तो ललित भाई आया था वहां ज्ञान सरोवर में, उसने सुनाया कि अभी लिटरेचर से प्रिंटिंग बुक सिवाय कुछ बेचना नहीं है। जो भी समझो की चेन है, पेन है, पर्स है, बैग है, पोस्टर्स है, सब पहली तारीख तक खत्म करना है, और जो खत्म ना हो वो यज्ञ में स्वाहा करना है, दादियां उसको गिफ्ट के रूप में देंगी। तो ललित भाई कहता था कि समझो गिफ्ट का पैकेट बना दिया, पेन है, बैग है, कुछ भी यदि यज्ञ के तरफ से ब्राह्मणों को मिलेगा तो ब्राह्मण क्या करेंगे, 50 रुपए की चीज मिली तो ब्राह्मण समझेंगे हमको कम से कम 100 रुपया तो बाबा के भंडारे में डालना चाहिए ना। तो चिंता नहीं करनी है, और भी भंडारे में आएगा। तो क्या है कि चिंता करने से क्या होता है, कहते चिंता चिता समान। काजी दुबले क्यों, सारे गांव की चिंता करते हैं। तो ब्रह्मा कुमारियां देखो कोई दुबली पतली नहीं चिंता नहीं बाबा खिलाता पिलाता सब कुछ कराता है तो ब्रह्मा कुमारियों को ख्याल होता है तो वजन कैसे कमी करने का कभी कभी उसको उसके लिए इलाज करना पड़ता है, कभी मोटे होने के लिए इलाज नहीं करना पड़ता क्योंकि चिंता नहीं करते हैं। तो उसका प्रूफ है कि हमारा शरीर दिन प्रतिदिन मोटा होता जाता है। तो बाबा कहते हैं कि आपको ख्याल करना है तो यही चिंता हो हम बाप समान कैसे जल्दी जल्दी बने, बाप समान बनने की चिंता रखो, अपना अविनाशी खजाना जमा करने का पुरुषार्थ करो, विनाशी खजाने की आशा नहीं रखो, ना चिंता करो। और ज्ञान योग से हमारे संबंध तो सुधरते ही जाते हैं, तो उसकी भी चिंता नहीं, क्योंकि जितना हम मीठा बनते हैं प्रेम से व्यवहार करते हैं, गुस्सा छोड़ देते हैं, अपनी जो भी बुरी आदतें हैं छोड़ देते हैं, तो घर वाले खुशी होते हैं कि बोलो तुम खुश है, जाओ क्लास में जाओ, क्योंकि हमारे पास ऑस्ट्रेलिया में यंग लोग आए तो शुरू में उनके माँ बाप को चिंता होती थी कि ये क्या इन्होंने नया धर्म अपनाया, गर्लफ्रेंड नहीं है, पार्टियों में जाते नहीं, शराब पीते नहीं, सवेरे सवेरे उठकर योग करते हैं, तो शुरू शुरू में चिंता होती थी। परंतु जब वो लोग उन दिनों में 70s में क्या है कि जवान बच्चे क्या होते थे, हिप्पी होते थे और घूमते रहते थे, माँ बाप को मालूम ही नहीं कि बच्चे कहाँ हैं और माँ बाप से खास संबंध भी नहीं रखते थे। पर जब बाबा के बच्चे बन गए तो माँ बाप से अच्छा संबंध रखना शुरू कर दिया और कार का एक्सीडेंट कम होने लगा। दूसरे बच्चे जो ज्ञानी नहीं थे वो तो शराब पीते, ड्रिंक ड्राइविंग एक्सीडेंट, तो शराब के नशे में एक्सीडेंट करके आते थे, उनको माँ बाप को उनकी पुलिस में जाकर छुड़ाना पड़ता था, उनको कार रिपेयर करने का खर्चा देना पड़ता था। तो कहा तो ये तो बच्चे हमारे बहुत अच्छे हैं, कि कोई हमको चिंता नहीं करनी पड़ती, तो फिर खुश हुए। और एक भाई तो आता था तो गुस्सा छूट गया, पर थोड़ा समय आना बंद किया तो फिर गुस्सा करने लगा। तो उसके माँ बाप कहते हैं तुम क्यों नहीं जाते हो ब्रह्म कुमारियों में, तुम जाते थे तो शांत होते थे। तो क्या है कि हमारे परिवर्तन से घर वालों भी खुश रहते हैं और हमारा जो संबंध अच्छा रहता है, चाहे सासू बहू है, देरानी जेठानी है, ननंद भाभी है, संबंध अच्छा हो जाता है तो फिर लड़ना झगड़ना बंद हो जाता है। तो इसलिए बाबा ने एक कमाल किया कि कई प्रकार की माताओं को, 300 माताओं को इकट्ठा रखा 14 साल। ये एक विशेष बाबा की सिद्धि थी, क्योंकि शिवानंद स्वामी वो जब प्रकाशमणि दादी को मिले तो कहा कि आपके बाबा ने इतनों को कैसे साथ में रखकर ट्रेन किया, मैं तो 20 माताओं को भी ट्रेन नहीं कर सका। कहा कि मेरे पास 20 माताएं थी, मैंने सोचा चलो उनको संन्यास कराऊं, तो मैंने उनको रखा, एक मास में मैंने हाथ जोड़ा कि आपस में इच्छा से इतने झगड़ती रही माताएं आपस में। तो गुजराती में तो एक कहता का है कि चार मड़े चोटला वारे गड़ना उठला, मतलब चार माताएं मिले, एक एक चोटी वाली चार माताएं, दो चोटी वाली दो माताएं मिले, तो घर की सफाई हो जाएंगी खटपट खटपट से। परंतु आपके बाबा ने कैसे रखा? कहा मैंने पहले तो चालू माताओं को रखा, फिर मैंने समझा ये तो इतनी एजुकेटेड नहीं है, मैंने एजुकेटेड माताओं को रखा, तो वो भी ऐसी निकली, वो भी आपस में झगड़ने लगी। आपके बाबा ने इतनों को कैसे रखा साथ में? तो ये तो भगवान की कमाल है ना, जो हमको इतनी आत्मिक वृत्ति, भाई भाई की वृत्ति बनाकर इतना अच्छा संबंध कर दिया आपस में। तो दो बहनें लड़ती नहीं है, नहीं तो समाज में तो सासू बहू इकट्ठे हुए झगड़ा होगा, हाँ दिरानी जेठानी झगड़ती रहेंगी, साला दामाद झगड़ेंगे नहीं। आज दो भाइयों को साथ में रखो झगड़ेंगे भी, पर दो बहनों को साथ में रखो झगड़ा शुरू हो जाए। तो इसलिए ये बाबा की कमाल है कि सबको साथ में लाकर प्रेम प्यार से रखा। तो क्या है कि जितना जितना हमारा बाबा के पर विश्वास होगा, कोई चिंता नहीं, ड्रामा पर विश्वास है चिंता नहीं, कर्मों का हिसाब किताब पूरा हो रहा है और भी खुशी है, चाहे बीमारी है चाहे कुछ भी नुकसान हुआ, कुछ न कुछ उसमें कल्याण है। तो इस भावना से क्या होगा कि हम बेफिक्र रह सकते हैं। ओम शांति।
ओम शांति। आदरणीय दीदी ने हम सबको चिंता मुक्त बना दिया, बेफिक्र बना दिया। हाँ, बचपन में बच्चों की बुक से कविता पढ़ते थे, हम हैं आत्मा तुम हो आत्मा आपस में भाई भाई, बाबा कहते पढ़ो पढ़ाई नहीं किसी से लड़ो लड़ाई, ना अपने से लड़नी है विचारों का संकल्प विकल्प अपनी लड़ाई है, और फिर जब वो अपनी लड़ाई होती है तो बाहर भी आती है। तो दीदी ने हमें बहुत सुंदर शिक्षा दी कि बाबा बैठा है। दूसरी ज्ञानमृत से कविता आई थी कि मेरे जिम्मे तेरे हर काज संवारूंगा, तू सिर्फ एक काम कर अशरीरी बन मुझ बाप को याद कर। तो दीदी ने लौकिक अलौकिक विभिन्न फिक्रों को चिंताओं को हमारे सामने विश्वव्यापी दृष्टिकोण से चित्रित किया, और दीदी ने हमें यहाँ बैठे ही ऑस्ट्रेलिया लंदन मलेशिया श्रीलंका इत्यादि देशों में भ्रमण करा के निश्चिंत बना दिया कि मेरा बाबा सबका बाबा है, तो मेरे साथ वो है तो मुझे कोई फिकर नहीं। फिकर नहीं तो क्या बन गए? बेफिकर। और उसका आधार आत्मस्मृति, अशरीरी स्थिति और प्यारे बाबा की मीठी याद। सब डबल लाइट हो गए। तो हम आदरणीय दीदी का बेफिक्र ब्राह्मण जीवन आत्मस्वरूप में स्थित होकर के धन्यवाद करते हैं। दीदी आपने हमें बहुत सुंदर ज्ञान मक्खन खिलाया, पावर भरी, हम दिल से आपका शुक्रिया करते हैं कि हम ऐसा ही सदा निश्चिंत निर्विघ्न और आत्मिक स्मृति में स्थित रहेंगे, ऐसा संकल्प है ना सभी का। थैंक यू दीदी।
ओम शांति। अभी याद में आप प्रयोग करेंगे, एक दो के सामने सामने थोड़ा 5 मिनट बैठो, एक दो को दृष्टि दो और बुद्धि में ये रखना है मैं आत्मा हूँ, ये भी आत्मा है। तो आत्मिक स्मृति में रहकर आत्मा को दृष्टि दो, ठीक है ना?
साथ है, डरने की क्या बात है, ईश्वर अपने साथ है, डरने की क्या बात है, सफलता साथ हमारे, सदा सफलता साथ हमारे, हाथ में उसके हाथ है,
ईश्वर अपने साथ है, डरने की क्या बात है, सदा सफलता साथ हमारे, सदा सफलता साथ हमारे, हाथ में उसके हाथ है, ईश्वर अपने साथ है, डरने की क्या बात है।
ओम शांति। अभी सभी सीधे बैठ जाओ जैसे पहले बैठे थे, और दृष्टि लेकर बाबा की याद में अपना टाइटल कि मैं बेफिकर बादशाह हूं ये याद रखना, और कभी भी कैसी भी बात आए देखना है कि हमें फिकर ना हो, बस बाबा का हाथ साथ पकड़ करके चलते रहना हो। ओम शांति।